साथ तुम्हारा प्रभु इतना है प्यारा।
जिस सभा के बीच प्यारे प्यारे दिलवाला शिव बाबा के साथ साथ अनेक दिलों की धड़कनों को जिन्होंने लंबा काल दिया है और खुश कर दिया है, ऐसे दिलवाला भाई बहनों के दिलों को जीतने वाले डॉक्टर सतीश भाई जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से इस सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। कैट प्रोग्राम को आपने ही तैयार किया और बाबा की जो दिल थी गवर्नमेंट को भी मेडिटेशन से क्या क्या हो सकता है इसका प्रूफ दें, आपने बाप दादा के उन आशाओं को पूरा किया है। ट्रॉमा सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ साथ ढेर सारे मिलेनियम अवार्ड्स जैसे इंटरनेशनल अवार्ड्स आपने अपने कार्य कारोबार से जीते हैं, विभूषित हैं आप उनसे, और देश विदेश में बाबा का नाम रोशन करने में एक नई दिशा आपने खोली है। मैं अधिक वक्त ना लेते हुए आपसे ही अनुरोध करती हूँ, अनुभव की अथॉरिटी क्या होती है और इस अनुभव की अथॉरिटी से हमारे योगी जीवन में हम प्राप्ति संपन्न जीवन का कैसे अनुभव कर सकते हैं, इस विषय पर अपनी मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई जी।
ओम शांति। इस विषय पर बात करने से पहले समझता हम दो मिनट और मेडिटेशन करें, व्हाइट लाइट में ही मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। अनुभव की अथॉरिटी, हम बाबा के बच्चे, सभी बाबा के बच्चे, सभी का लक्ष्य क्या है? सभी का लक्ष्य है संपन्न और संपूर्ण बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही लक्ष्य है ना। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अर्थात महावीर, जैसे ब्रह्मा बाबा को हम महावीर भी कहते हैं ना, महावीर भी कहते हैं, पर महावीर बनने से पहले क्या बनना पड़ता है? महारथी बनना पड़ता है। तो महारथी, महावीर, घोड़ेसवार और प्यादे में क्या फर्क है? क्या फर्क है? जो घोड़े, जो प्यादे होते हैं ना, प्यादे होते हैं वो, उनको मतलब मुरली भी रेगुलर नहीं सुनते हैं ना, कभी टाइम मिला तो सुन ली, कभी टीवी पे सुन ली, कभी अमृत वेला कभी कर लिया, कभी नहीं किया ना, क्लास में भी प्रॉपर नहीं जाएंगे ना, मोबाइल पे मुरली सुन लेंगे नहीं? वो मतलब एक नियम निभाते हैं ना, कि नियम निभाते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ तो चले गए है ना। तो ये प्यादे की श्रेणी में आते हैं ना। और जो घुड़सवार होते हैं ना, वो सुनने सुनाने वाले होते हैं, सुनेंगे और सुनाएंगे है ना, वर्णन करते हैं, बाबा की मुरली सुनी, क्लास में भी जाएंगे, अमृत वेला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो क्या करते हैं, मतलब वाणी से ज्ञान सुनाते हैं किंतु उनके कर्मों में ज्ञान नहीं आता है, नहीं ऐसा। और महारथी जो होते हैं ना, महारथी होते हैं वो हर हर जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट ना, एक एक पॉइंट के अनुभवी होते हैं, अनुभव की अथॉरिटी, वो इतना उसको गहराई से यूज करते हैं एक पॉइंट को जीवन में, उसका टेस्ट कैसा होता है बाबा से, एक संबंध की अनुभूति है ना, एक एक संबंध की अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं ना। माँ का संबंध, बाप का संबंध, क्या होता है बाप, बाप कैसे है, शिव बाबा हमारा बाप कैसे है, शिव बाबा हमारी माँ कैसे है, ब्रह्मा बाबा द्वारा कैसे हमें माँ की पालना दे रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा हमें कैसे बाप की पालना दे रहा है, शिव बाबा टीचर कैसे ब्रह्मा बाप द्वारा, बाबा जो है हमको हर संबंध की पालना किसके द्वारा देता है, डायरेक्ट देता है क्या, ब्रह्मा के द्वारा देता है ना, तो ब्रह्मा के द्वारा माँ की पालना क्या, उसका क्या अनुभव होता है, क्योंकि हर हर एक अनुभूति की जो प्राप्ति अनुभूति अलग अलग है, हर हर संबंध की अनुभूति, जैसे आपने देखा गुलाब का फूल है उसकी खुशबू कैसी है, और मोती के फूल की खुशबू कैसी है, चमेली का फूल कैसी खुशबू है, रात की रानी की फूल खुशबू कैसी है, अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, तुरंत पता लगा सकते हैं ना, ऐसे माँ के संबंध की अनुभूति क्या है और इसकी प्राप्ति क्या है, माँ के संबंध की अनुभूति क्या है, प्राप्ति क्या है, हर संबंध की अनुभूति और प्राप्ति, योग क्या है, यही योग है, एक एक संबंध की अनुभव की अथॉरिटी बन जाए हम, और तभी हम निरंतर योगी बन सकते हैं ना, खाली एक ही संबंध से करेंगे याद तो क्या होगा, हम योगी नहीं बन सकते नहीं, निरंतर योगी नहीं बन सकते, सुबह शाम के योगी बन सकते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, पर हमारा योग कैसा है, निरंतर, तो निरंतर योगी बनना है तो हमें हर संबंध हर हर कार्य में हमें क्या क्या पड़ता है, कोई ना कोई संबंध की आवश्यकता होती है ना, तो हर संबंध की अनुभूति हमें होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो जैसे माँ का संबंध है, बाप का संबंध है, टीचर का संबंध है, सतगुरु का संबंध है ना, और क्या संबंध होता है बाबा से, बंधु का संबंध, बड़े भाई का संबंध, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त का संबंध, और साजन का संबंध, और सज्जन का संबंध, सज्जन में ना, और बच्चे का, मुख्य नौ संबंध की अनुभूति तो बहुत गहराई से होनी चाहिए, वैसे तो हर संबंध की अनुभूति बाबा से हमारी होनी चाहिए, ठीक है, पर मुख्य नौ संबंध तो इतने गहराई से अनुभव होने चाहिए कि हमें मतलब उसकी इतनी रस बैठ जाना चाहिए अंदर ना, अंदर रस बैठा होना चाहिए कि एक एक संबंध की अनुभूति का, तो ये अनुभव जैसे हमें हमारे पास अथॉरिटी हो, हम कोई कहे तो हमें खाली माँ का संबंध क्या होता है, भाषण करने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली माँ के जैसे माँ की याद आती है तो क्या होता है, माँ की याद आए तो क्या होता है, प्रैक्टिकली चेहरे में चेंज आ जाता है ना, नहीं बाप की याद आए तो क्या होता है, चेहरा बदल जाता है ना, टीचर की याद में अलग स्मृतियां होती हैं, सतगुरु की याद की अलग होती हैं, बड़े भाई की याद आए तो अलग स्मृतियां होती हैं, अनुभूति उसकी अलग होती है ना, ऐसे ही हमारे उसको दोस्त पूर्व जिगरी दोस्त याद आ जाए तो उसकी अलग, साजन की स्मृति आए तो उसकी अलग, चेहरे बदल जाता है ना, और सज्जन डॉक्टर की याद आ जाए तो जिस डॉक्टर ने हमें ठीक किया हो, हमें जीवन दिया हो, संजीवनी बूटी के समान हो, उसकी याद आए तो, और बच्चा याद आ जाए तो उसकी अलग अनुभूति होती है ना, एक एक अनुभूति का, तो ये मुख्य जो हम पहले मैं गिना देते हैं कौन कौन सी अनुभूति पे हमें मास्टरी होनी चाहिए, पहली अनुभूति ये हम एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से हमारी होनी चाहिए, ठीक है, फिर ज्ञान के हर पॉइंट की अनुभूति होनी चाहिए, ज्ञान का जो पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट है ना, ज्ञान कितने पॉइंट्स हैं, एक मूल्य में कितने पॉइंट होते हैं ना, एवरेज है जी कितने पॉइंट होते हैं ज्ञान में, हाँ दस दस तो कम से कम हो, 10-12 पॉइंट तो होते रोज के, तो एक पॉइंट के गहराई की मतलब इसकी मतलब गहरी अनुभूति होनी चाहिए ना, फिर हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए ना, हर गुण जितने भी दैवी गुण है ना उसी गहराई से अनुभूति हो ना, और फिर हर शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए ना, फिर देही मन स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए ना, बहुत देही मन स्थिति क्या होती है, और कौन सी स्थिति होती है, आत्म मन स्थिति क्या होती है, फर्क है दोनों में, सेम है, देही मन स्थिति और आत्म मन स्थिति में कुछ फर्क है, सेम है, जो समझते सेम है वो हाथ उठाओ, दही अभिमान स्थिति और दही नहीं, दही अभिमान स्थिति, तो दही अभिमान स्थिति और आत्म अभिमान स्थिति क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है बोलो, ऐसा क्या, ठीक अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, ठीक है, गलत नहीं है। और फिर अशरीर स्थिति की गहरी अनुभूति होनी चाहिए ना। अशरीर स्थिति क्या होती है, उसका गहरे अनुभव की अथॉरिटी, अशरीर स्थिति क्या है। क्योंकि जब अशरीर बनके हम अशरीर बाप को याद करते हैं, देहीमानी स्थिति से ना हम इतना विक्रम विनाश नहीं हो पाते। देहीमानी स्थिति में रहकर जब बाप को याद करते हैं, विक्रम विनाश नहीं हो पाते, वो बिगिनिंग की स्टेज है। फिर उसके बाद आत्मानी स्थिति आती है, उसमें भी हम विक्रम विनाश नहीं कर पाते। विक्रम होते नहीं है किंतु विक्रम विनाश नहीं कर पाते। जब अशरीर स्थिति में, अशरीर स्थिति में स्थित होकर अशरीर बाप को याद करते हैं और घर में याद करते हैं, घर में माना परम धाम में याद करते, तो विक्रम विनाश होते हैं ना। और फिर विदेह स्थिति क्या होती है ना, उसका भी अनुभूति होनी चाहिए गहराई से ना। फिर मुझे 2 घंटे चाहिए क्लास कराने के लिए, पर ना 1 घंटे में पूरी नहीं होगी। कोई बात नहीं, अभी कुछ आप सोचते रहना, कुछ अभी हम शुरुआत कर लेते हैं, बाकी आप सोचते रहना, ठीक है। फिर सूक्ष्म वतन की क्या अनुभूति होती है ना, सूक्ष्म वतन की अनुभूति क्या होती है, परम धाम की अनुभूति क्या होती है ना। तो इसकी मतलब हमें गहराई से एक एक चीज की अनुभूति, मतलब इतनी अनुभूतियां होनी चाहिए, मतलब अनुभूति खान होना चाहिए ना। जिससे क्या होगा, आप जब भी चाहो मतलब निरंतर योग लगा ही रहेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम योग, हमारा जीवन योगी है ना, योगी जीवन की अनुभूति होती रहेगी, निरंतरता रहेगी है ना। क्योंकि निरंतर योग के द्वारा विक्रम विनाश हो सकते हैं, तभी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी, ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग होगा, तभी योग अग्नि का काम करेगा, तभी हमारे विक्रम विनाश होंगे है ना, तभी हम हल्के हो पाएंगे, तभी हम उड़ पाएंगे है ना, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो ये तो हमें क्लियर होगी ना, हमें महारथी माना एक एक मतलब संबंध, ज्ञान का एक एक पॉइंट और गुण, शक्तियां, स्थितियां, आत्मिक स्थितियां, डिफरेंट आत्मिक स्थिति की स्थितियां, तीनों लोक है ना। ये सरकारी लोक में भी हम बिल्कुल डिटैच, न्यारे कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे रहे, पवित्र रहे, वो स्थिति का अनुभव हो है ना। फिर वो स्थिति सूक्ष्म वतन की स्थिति का अनुभव हो, ठीक है, परम धाम की स्थिति का अनुभव हो, और इस दुनिया में रहते हुए सुख धाम की स्थिति का भी अनुभव होना चाहिए। अभी नहीं होगा, विक्रम विनाशन के बाद होगा है ना। पर धीरे धीरे जैसे वो पर्दा खुलता है ना, जब हमारा मतलब ऐसी स्थिति का अनुभव होना, कंप्लीट कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है ना, वो तब होगा जब हमारा, हमारे तीन मन है ना, हमारे पास तीन मन है, एक तो कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को हम जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हम जानते नहीं है, मतलब उसमें क्या भरा हुआ है हमें याद नहीं है, भरा तो इसी जन्म का है, और अनकॉन्शियस माइंड को तो बिल्कुल नहीं पता है पिछले जन्म क्या भरा है हमने उसमें। जब तीनों मन हमारे, जब सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है, तब 100% मन जब कॉन्शियस हो जाता है ना, तब हमारी कंप्लीट कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ सकती है। क्योंकि 90% माइंड अभी कैसा है हमारा, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम सुबह सुबह प्लान बनाते हैं ना, आज हम ऐसे करेंगे, आज हम ऐसे करेंगे, आज हम 1 घंटे में ये करेंगे, दूसरे घंटे में 100 मान रखेंगे, तीसरे घंटे में 100 मान रखेंगे, आज बाबा की मुद्दे को इतनी बार रिवाइज करेंगे है ना, एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे। फिर क्या होता है, शाम को देखो, चेक करो तो कितना निकलता है, कितना फॉलो होता है, बताओ, सच सच बताओ, 10% ही फॉलो होता है ना। कि कॉन्शियस माइंड हमारा 10% ही है ना, तो 90% मन तो हमारा क्या है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है ना। और फरिश्ते जो होते हैं उनका 100% मन कॉन्शियस होता है, ये फरिश्ते होते हैं ना, इसलिए फरिश्ता वही संकल्प करता है जो होने वाला है, फरिश्ते के बारे में वही संकल्प आता है जो होने वाला है, और जो होने वाला आता है उसको टच हो जाता है, राइट। तो फरिश्ते के, इसलिए उसकी 100% कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होती है। देवताओं का भी 100% कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके कारण वो जो है क्या होता है, उनका हर संकल्प सिद्ध होता है। ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ करके अपने मन को क्या बनाया, 100% कॉन्शियस बनाया। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में भी पाप भरे होते हैं, विक्रम भरे होते हैं, तो उनको उन्होंने विनाश कर दिया, ठीक है। तब से बाबा कहां बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एक बात को लेते हैं, क्योंकि जितनी पूरी हो सकेंगे उतनी पूरी करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, फिर कभी मिलेंगे वापस तो फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सब महारथी का मैंने मतलब बताया ना, महारथ और महावीर माना क्या होता है, महावीर माना देखो महारथी जो होता है ना वो पांचों कर्मेंद्रियां उनको वश करता है, और महावीर जो होता है वो कभी कभी महारथी हार सकता है, उसकी हार हो सकती है ना। पांचों कर्मेंद्रियों को तो वश में रखता है, पांचों घोड़ों को कंट्रोल करता है, किंतु उसका मन बुद्धि संस्कार पर इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है। किंतु महावीर वो है जो कभी माया से हारता नहीं है, उसके दिल में सदा बाबा रहता है, उसकी दिल में सदा सच्ची और साफ होती है, उसमें बाबा रहता है, और जिसके दिल में बाबा होता है उसका मन उसके कंट्रोल में आ जाता है। मन की मन पर विजय हो जाती है, और जिसकी मन पर विजय होती है संस्कारों पर विजय हो जाती है, और ऐसा महावीर कभी भी माया से हार नहीं खाता है। महारथी को अभिमान हो सकता है अपने पुरुषार्थ का, अपनी सफलता का, किंतु महावीर को कभी भी अभिमान नहीं होता। कहावत क्या है, हनुमान माना जिसने अपने मान का हन किया हो, मतलब जिसने अपने मान को क्या किया हो, मार दिया हो, है ना। हनुमान मारना, राइट। जिसने अपने कहते ना गीत भी है ना, अपना क्या गीत है, योगी वही है सच्चा जिसने किसको मारा हो, अहंकार को मारा हो, है ना। हमारा वो स्लोगन भी ना, निराकारी जो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का लास्ट का स्लोगन क्या था, निराकारी निर्विकारी निरहंकार। निराकारी बन गए, है ना, निराकारी का अभ्यास किया, निराकारी भी निर्विकारी भी बन गए। निर्विकारी का भी अहंकार हो सकता है कि मेरे तो कोई विकार नहीं है, ठीक है, लास्ट में निरहंकारी है ना, राइट, लास्ट में निरहंकार, लास्ट में अहंकार को जीतना होता है। तो सबसे पहली जो बात है रिक्वायरमेंट, अब पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, अनुभव की अथॉरिटी कौन बन सकता है ना, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या है, कौन अनुभव कर सकता है, एक एक संबंध की अनुभूति कौन कर सकता है बाबा से, कुछ क्वालिफिकेशन होगी ना, हर एक थोड़ी ना कर सकता है, दुनिया वाले कर सकते हैं बाबा से एक एक संबंध की अथॉरिटी नहीं, ज्ञान के पॉइंट के अनुभव नहीं कर सकते, गुणों का अनुभव नहीं कर सकते, कौन कर सकता है। सबसे पहली बात है जो मैंने अभी बताई, दिल सच्ची और साफ चाहिए। जिसकी दिल सच्ची और साफ है, सच्ची और साफ दिल वाले ही क्या कर सकते हैं, वो बाबा से हर संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं, वो ही ज्ञान का एक एक पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। बस हर चीज के लिए, गुणों का अनुभव करना हो तो वो अथॉरिटी बन सकते हैं, शक्तियों का अनुभव करना हो, आत्मा की डिफरेंट स्थितियों का अनुभव करना हो, अथॉरिटी बनना हो तो वही करते। सही पहली बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, सच्ची और साफ दिल। सच्ची साफ दिल का मतलब क्या है, जिस दिल में सच्ची दिल माना, जिस दिल में क्या हो, कौन हो, जिस दिल में जो बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, बाबा की श्रीमत है, बाबा और बाबा की श्रीमत समाई हो, वो है सच्ची दिल। जिस दिल में बाबा और बाबा की श्रीमत समाई हो वह सच्ची दिल है। मतलब बाबा माना दिल, माना कॉन्शियंस अंतरात्मा। दिल कौन सा वाला दिल, ये वाला दिल, ये दिल नहीं, ये तो फिजिकल पंप है, इस दिल की बात नहीं है, ये आत्मा का दिल कॉन्शियसनेस, जो आत्मा के अंदर सात एनर्जी है ना, इस दिल में क्या होता है यूजली, क्या कौन समाया रहता है हमारे मनुष्य के दिल में, कौन मन में, कौन दिल में, दिल में मन और मन अलग है, दिल अलग है, दिल में कौन समाया रहता है, सबसे पहले तो अपनी देह समाई होती है, देह के संबंधी समाये होते हैं, माँ बाप समाये होते हैं, पति पत्नी बच्चे, है ना, नहीं दोस्त समाये रहते हैं, है ना, अपना बिजनेस समाया रहता है ना, अपना और क्या, मकान समाया होता है, कार समाई होती है, कार यहाँ आ सकती है, कार की स्मृति रहती है ना अंदर, दिल में रहती है वो भी ना, कार को कुछ हो जाए तो क्या होता है, इस दिल को भी यूं होने लगता है ना, है ना। तो इस दिल में जो कुछ होता है इसका इस दिल से कनेक्शन है ना। तो दिल हमारी, दिल सच्ची साफ, सच्ची का मतलब है जिस दिल में सत्य हो, सत्य, सत्य क्या है, सत्य क्या होता है, सत्य माना जो सत्य, सत्य की दो निशानियां, एक तो अविनाशी होता है, सत्य कभी पैदा नहीं होता, सत्य कभी मरता नहीं है, दूसरा सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे अंदर सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, आपका सत्य क्या है, हम कौन है, आत्मा है। तो जिस दिल में ये है ना, सत्य है ना कि मैं कौन हूं, है ना, मैं आत्मा हूं, जिस दिल में क्या है, परमात्मा की संतान हूं, मतलब जिसमें, और एक एक संबंध की अनुभूति है बाबा के साथ की, ठीक है, एक एक संबंध की अनुभूति, और डी फॉर ड्रामा, मतलब जिस दिल में, मैं तो कहता हूँ दिल जिस दिल में एबीसीडी समाया ना वो सच्ची दिल है, ठीक है। एबीसीडी माना ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना एक संबंध, और डी फॉर ड्रामा। जिस दिल में आत्मा की जो देह समाई है, देखे संबंध संपर्क समाये, देखे संबंध समाये, देखे संपर्क समाये, देखे पदार्थ समाये, और ड्रामा में वो क्या है, कंफ्यूज रहता है। ड्रामा जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, कंफ्यूज रहता है ड्रामा में, वो दिल सच्ची नहीं है, गंदी दिल है, झूठी दिल है। तो हमें क्या करना है, बाबा ने एक मुरली, बाबा ने कई बार मुरली में रिवाइज करते हैं बच्चे, देखे संबंध, देखे संपर्क, देखे पदार्थ, देखे स्वभाव। देखे स्वभाव पांच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देखे स्वभाव संस्कार को बुद्धि से त्याग, बुद्धिमान दिल से त्याग, अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर अपने को आत्मा निश्चय कर सकते हो। तो पहले इसको त्यागेंगे तो अपने को आत्मा, तो जिस दिल में ये है ना, और फिर मां में कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, तो जिस दिल में ये है ना, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और फिर दिल साफ हो जाएगी। साफ माना जो विक्रम किए हुए ना वो साफ हो जाए। साफ दिल उस दिल में, साफ दिल में जिस दिल में शिव बाबा के अलावा कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो कहते सच्चे दिल पर साहब राजी और साफ दिल मुराद हासिल। तो जिसकी दिल सच्ची और साफ हो उसमें शिव बाबा आ जाता है। उस दिल में कौन आ जाता है, शिव बाबा आ जाने आने का मतलब शिव बाबा की याद रहती है। शिव बाबा आने का मतलब नहीं शिव बाबा वहां से उतर के नीचे हमारे पास आ जाता है, मतलब शिव बाबा की याद सदा समाई रहती है उसको, ठीक है। तो शिव बाबा की याद हमेशा समाई रहती है, और शिव बाबा का फिर एक एक गुण उसको अनुभव होता है। तो मां के, ये तो पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो चार नियम और चार मर्यादाएं हैं ना, जो ब्राह्मण सच्चे चार नियम है ब्राह्मणों के, वो उनको प्रैक्टिकली करता है और चार परहेज पूरे करता है। पहला नियम क्या है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे, जिसका पावरफुल अमृत वेला हो। अमृत वेला का लक्ष्य क्या है, आनंद, मतलब आनंद की स्थिति रहनी चाहिए, मतलब 45 मिनट में से कम 20 मिनट तो आनंद में रहना चाहिए। आनंद माने क्या होता है, आनंद माने आनमाना बंधन, आत्मा रूपी पंछी देह और देह की दुनिया के बंधन के पार बाप की गोद का अनुभव करे, बाप की गोद में लवलीन हो जाए, बाप की याद में लवलीन स्थिति, ये जो स्थिति आनंद की स्थिति है। कम से कम 20 मिनट बाबा की याद में रहे, ठीक है, मतलब बाबा की गोद में लवलीन रहे, कोई दुनिया का संकल्प ना है, देह के देह और देह की दुनिया का संकल्प ना है, कम से कम 20 मिनट है। वैसे तो 45 मिनट होना चाहिए, 45 का 45 मिनट महारथ की निशानी होती, बैठे और समाए, है ना। ये शुरुआत की बात कर रहा हूं, घोड़े सवार की बात कर रहा हूं, ठीक है। घोड़े सवार से हाथी सवार बनने में टाइम लगता है ना, तो शुरुआत 20 मिनट से करो, किंतु बाद में तो 45 का 45 मिनट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बैठे और समाए, लवलीन हो गए एकदम से, तो ये हमारा लक्ष्य है अमृत वेला याद का, है ना। तो पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, फिर दूसरा मुरली, मतलब मुरली पे मुरली, कभी भी हमेशा क्लास में जाके मुरली सुनना। अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहते हो ना, महारथी बनना चाहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनना महारथी, महारथी के बाद महावीर बनेंगे, है ना, तो पहले महारथी बनना पड़ेगा ना। तो महारथी बनने के लिए ये पक्का कर लो कि हमें मोबाइल पे मुरली नहीं सुननी है, ठीक है, टीवी में मुरली नहीं सुननी है, पीस ऑफ माइंड में मुरली नहीं सुननी है, कहां सुननी है, क्लास में जाके सुननी है। और क्लास में जाके सुनने का महत्व है ना, क्योंकि वहां शक्ति भी मिलती है। एक रिसर्च हुई थी पीछे, शायद आप लोगों को पता हो, पता नहीं पता है, कि एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है हमारी ना, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब जीवनी शक्ति होती है, हर जगह की, इंसान की भी होती है, जगह की भी होती है। उसको नाप के देखा गया है, जैसे जो शमशान घाट होते हैं ना, शमशान घाट जो होते हैं वहां एक दो एक, एक, एक से 1500 की लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। वहां आप जाएंगे ना, वहां पर आप जो है वहां जब उदास हो जाएंगे, है ना, जहां बहुत भीड़ होती है ना सड़क पे, बहुत जहां चुराया होता है ना, जहां पे रेड लाइट होती है, वहां भी एनर्जी 2-2.5 हजार रहती है, इससे जल्दी थक जाते हैं। अपने घरों में एनर्जी 5-6 हजार रहती है, आश्रम में एनर्जी 14-15 हजार रहती है, जीने के लिए 7 हजार चाहिए, ठीक है। तो जितना मतलब पावरफुल स्थान, जो जितना हाई एनर्जी का स्थान होगा ना, वहां आपका अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। खाली आप मुरली नहीं सुनते हो, मुरली अंदर रिकॉर्ड भी होती है, हाई लाइफ फोर्स एनर्जी के स्थान पे बैठ के सुनेंगे तो अंदर रिकॉर्ड होगी। घर में बैठ के मुरली पीस ऑफ माइंड पर सुनते हैं, रिकॉर्ड नहीं होती अंदर। घर में बैठ के मुरली पढ़ते रिकॉर्ड नहीं होती है। घर में भी सुनो, घर में भी पढ़ो, सुबह सुबह अमृत वेला योग करके पढ़ो, क्योंकि तो फिर आपको सेंटर पे जाना अति आवश्यक है। हाँ जी, एंगस्ट्रॉम में होती है लाइफ फोर्स एनर्जी को नाप जाते हैं, उसमें मत जाओ आप। मतलब पर मेन बात क्या है, आपको ये देखना कि हमें अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। रिकॉर्ड नहीं हो तो क्या फायदा है? देखो अभी हमें मुरली ऐसे पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर में पूछो क्या सुना, क्या पढ़ा था, याद ही नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग हमारी मुरली सेंटर में जाके होगी, और फिर मुरली को जेब में रखने की आदत डालो, है ना। मुरली को अपने साथ रखने, मुरली क्या है, बाबा का लव लेटर है ना, तो मुरली को जेब में रखने की आदत डालो, ठीक है। तो मुरली को दिन में बार बार रिवाइज करो। फिर तीसरी बात है अटेंशन, ब्राह्मणों का नियम है अटेंशन। जो बाबा ने मुरली में सुनाया सारा दिन अटेंशन रखो उसके ऊपर, आज बाबा ने क्या सुनाया, आज बाबा ने क्या सुनाया, आज बार 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 रिवाइज करो, देखो आज बाबा ने क्या कहा। रात को जाकर क्या करो, है ना, लव लेटर कैसे पढ़ते हैं, दिल के पास रखते हैं, और कब पढ़ते हैं, है? छुपा के पढ़ते हैं ना, देखते कोई आसपास नहीं तो निकालते हैं, और बुद्धि लव लेटर में रहती है ना। तो हमारी भले जेब में रहता है, किंतु उसको बार 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 जैसे मौका मिले निकालो, जैसा मौका मिले निकालो, एक लाइन पढ़ो, फिर मनन चिंतन मंथन सिमरण करो। तो सारा दिन ये अटेंशन लेनी चाहिए, भले कुछ और भी काम करें। आशिक माशुक क्या करते हैं, काम और दूसरे भी करते हैं, किंतु ध्यान एक दूसरे में रहता है, राइट। क्योंकि बाबा मेरे को सजनी बोलता है, बाबा मेरे को कहता है तुम नूरे रतन हो, बाकी लोग तो बोलते तुम क्या हो, कुछ भी ना, बेकार आदमी हो, है ना, तुम्हारी ना शक्ल है ना अकल है तुमको, है ना। घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं ना। और बाबा क्या बोलता है, तुम मेरे कौन हो, नैनों के नूर हो, तुम देवता बनने वाले हो, देवता और क्या ना, मुंह और मुसूर की दाल, ऐसे बोलते ना। किसी को बोलो ना मैं देवता बनने वाला हूं तो क्या बोलेंगे दुनिया वाले, ये मुंह और ये मसूर की दाल, है ना। नहीं तो मतलब बाबा कहता है तुम देवता बनने वाले हो, तो बाबा मुझे कितना प्यार करता है ना। तो बाबा का लव लेटर पढ़ने में कितना मजा आता है, आज की मुरली पढ़ के देख कितना मजा आता है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, तो एक एक बात कितनी गहरी है। स्लोगन देखो, वरदान देखो, है ना, धारणा के लिए मुख्य सार देखो, एक एक लाइन पढ़ो तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, उसको लगता है घोट के पी जाए ना। तो एक एक लाइन के ऊपर, एक एक मुरली का एक एक लाइन जो है ना, मतलब वो जैसे ज्ञान के पॉइंट के कहते हैं अनुभवी, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा के ज्ञान के एक एक लाइन में, महावाक्य में क्या है, सात बातें होती हैं। कौन कौन सात बातें होती है, एक तो हर लाइन में बहुत गुह्यता है, बहुत गहराई है ना। और क्या है उसमें, उसमें क्या है, कई राज भरे हुए हैं ना। हर मुरली में, हर लाइन में बहुत राज भरे हुए हैं, सीधी सीधी मुरली नहीं है, है ना। गुह्यता, राज और क्या है उसमें, रहस्य भरे हुए बहुत सारे, है ना, है ना, बहुत सारे रहस्य भरे हुए, बहुत महीन बातें उसमें है ना। सूक्ष्म है, इसका मतलब नहीं समझाता हूं, महीन, महीन और सूक्ष्म में फर्क है ना। महीनता होती है, सूक्ष्म होते हैं, और क्या होता है, अमूल्य होते हैं, एक एक कहते हैं अमूल्य होता है। तो मतलब हमें बहुत गहराई से उसका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। शाम तक ये होमवर्क है, मुरली हमारा होमवर्क है, तो उसका एक एक पॉइंट का आप मनन चिंतन मंथन करते जाओ तो अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। और सोने के पहले वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मन, सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या गलत हुआ लिखो, बाबा आज मेरे से सोचने में गलती हुई, ये देखने में गलती हुई, ये पढ़ने में गलती हुई, मैंने गलत चीज पढ़ ली, है ना। ये व्हाट्सएप मैसेज आते हैं ना, कुछ आते हैं, नहीं पढ़ने चाहिए ना, व्हाट्सएप पे रहना नहीं चाहिए। कुछ सुनने में गलती की मैंने, ये चीज सुन ली, है ना, ये मैंने गलत खा लिया, गलत बोल दिया, हाथ पैर से गलत काम किया, कुछ भी अमर्यादित हुआ लिखो बाबा को, है ना। सच्चाई सफाई से लिखो, तब सच्ची दिल साफ दिल बनेगी, है ना। और फिर क्या करो, फिर चार्ट भरो, घंटे घंटे याद का चार्ट भरो, दिनचर्या का चार्ट भरो, और फिर मुरली पूरी पढ़ के फिर तीन मिनट बाबा को याद कर सोचो। ये चार नियम जो ब्राह्मण करता है ना, उसकी उसकी स्थिति बढ़िया होती है, उसका अमृत वेला पावरफुल होता है। नहीं तो अमृत वेला कैसा होता है आप सब जानते हो, है ना, कैसे जानते, कैसा अमृत वेला करते हो, आनंद वाला करते हो, कौन सा वाला करते है, सोचना आप कैसा वाला करते हैं। आनंद की स्थिति मतलब बाबा से कंबाइंड स्थिति का अनुभव होना चाहिए। और फिर चार परहेज, पवित्रता, है ना, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। सत्संग ना, सत्संग ना बाबा और मुरली का संग, कोई और किताब। देखो एक 10 लीटर दूध ले लो, उसमें एक चम्मच आप जहर मिला दो तो क्या बन गया? तो बाबा की मुरली जो श्रीमत है ना बाबा की, इसमें आप एक थोड़ा सा बनमत डाल दो, थोड़ी सी बनमत डाल दो, क्या हो जाएगा? जहर हो गई। इसलिए बाबा कहता सिर्फ मुझसे सुनो और मेरी सुनी हुई बात को सुनाओ, अपनी तरफ से कुछ मत बोलो, ठीक है, उसको अनुभव करो। तो ये चार नियम और चार परहेज करेंगे और दिल सच्ची साफ रखेंगे तो फिर हमारे अंदर हम अनुभव की सहज हमको सारे अनुभव होते जाएंगे। चलिए पहले माँ का अनुभव करते हैं बाबा से ना। माँ के रूप में बाबा क्या करता है? शिव बाबा क्या करते हैं माँ के रूप में? ब्रह्मा बाप के द्वारा क्या करता है बाबा? कैसी क्या पालना करता है? तो शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा मुझे दिव्य जन्म देते हैं, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं। दिव्य ब्राह्मण जन्म है ना, सबसे पहले माँ के द्वारा जन्म होता है ना, तो दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं। ये तो इसकी मतलब दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं। ब्राह्मण माना क्या है? मनुष्य का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का मतलब क्या है? मनुष्य माना मन के वश में, और ब्राह्मण ब्रह्मा जैसे ना, ब्रह्मा ब्राह्मण बेहद, माँ माना बेहद की माँ, और ब्राह्मण माना ब्राह्मण बेहद, जिसका बुद्धि और मन बेहद में रहता हो, जिसकी बुद्धि और मन का भी हद, मनुष्य का मन और बुद्धि हद में रहता है। हद माना देह में रहता है, देह के संबंधों में रहता है, देह के संपर्क में रहता है, देह के पदार्थों में रहता है, देह के स्वभाव संस्कार में रहता है। और ब्राह्मणों का मन कहां रहता है? बेहद में रहता है। बेहद माना आत्मा हद है, बेहद है परमात्मा, हद है बेहद है आत्मा परमात्मा के संबंध, हद है बेहद है, और ड्रामा हद है बेहद है, तो एबीसीडी बेहद है, ठीक है। मतलब ये ज्ञान बेहद है, ज्ञान सार रूप में एबीसीडी है ना, तो बाबा के सारा टाइम उसकी बुद्धि इस ज्ञान में समाई रहती है। ब्राह्मण का मतलब है सारा दिन ब्राह्मण क्या करते हैं? ये ज्ञान बाबा की डायरेक्शन श्रीमत का ही मनन चिंतन मंथन से मनन करते हैं। मनन ना मन मन में रिवाइज करते हैं, चिंतन माना गहराई में जाते हैं, मंथन माना उसको बहुत बारीक पीसते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मेरे को समझ नहीं आया ये बात, आपने कहा बहुत मीठा बनो, मैं कैसे मीठा बनू? बाबा आपने कहा कुछ निंदा स्तुति मान अपमान सब सहन करो, मैं कैसे सहन करूं? मुझे रोज डाले देखो, बार बार मुझे इंसल्ट करते हैं मेरी, मैं कैसे सहन करूं? ये मेरी बार बार महिमा करते हैं, मैं कैसे सहन करूं? मान अपमान दोनों सहन करने के क्या करना है? कि अपमान सहन करना मुश्किल है, मान सहन करना आसान है, ऐसा क्या आसान है? दोनों सहन करना चाहिए, क्योंकि कोई मेरा बहुत महिमा कर रहा है, क्यों महिमा कर रहा है? उसको तो मतलब है इसलिए महिमा कर रहा है, ठीक है। वो मेरा मेरी महिमा नहीं कर रहा है, किसकी महिमा कर रहा है? मतलब की महिमा कर रहा है, और मुझे उसको उसके फूल का कुप्पा नहीं होना है। ये महिमा अगर कोई मेरे अंदर है भी तो किसकी दी हुई है? बाबा की दी हुई ना, उसको मैं अपना समझा तो क्या होगा? क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना, बहुत बहुत बड़ी। तो निंदा स्तुति, स्तुति भी सहन करनी पड़ती है, दुख और सुख, दुख भी सहन करना है, सुख भी सहन करना है, सुख एंजॉय नहीं करना है। सुना, इस समय का सुख मिलेगा तो एंजॉय करोगे तो क्या होगा? दुख सहन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सुख जो है ना वो अलग काल का सुख है, काग विष्ठा के समान है। काग विष्ठा कैसी होती है देखिए आपने, काग विष्ठा कैसी होती है? कौवे की उल्टी कैसी होती है? कौवे की उल्टी ना बहुत चमकदार, मोती की तरह, धूप में मोती की तरह चमकती है। आप बड़ी होती है ना, कभी देखना कौवे जहां दाना डाल के देखना, कौवा आएगा ना तो वहां पर थोड़ी देर में उल्टी भी करेगा, खाएगा पहले दाना फिर थोड़ी देर में उल्टी भी करने आएगा। आप देखना वो चमकती है एकदम मोती जैसे, मोती चमक रहा हो, और आप सोचो मोती है हाथ लगाओ तो क्या होगा? मैंने एक बार हाथ लगाया था 1981 में लगाया था, अभी तक मेरी इस उंगली में, इस उंगली को लगाया था मैंने ना, अभी तक मेरे को इसमें बदबू आती है ना। कितने साल हो गए, मतलब देखो आप कितने 37 साल हो गए, 37 साल हो गए, इस उंगली में अभी तक बदबू आती है ना। तो हम समझते हैं जीवन के संबंध है, शादी करेंगे, ये करेंगे, बच्चे होंगे, ये मकान लेंगे, कार लेंगे, सुख मिलेगा, हमारी डिग्री हो जाएगी, हम MBBS करेंगे, MD करेंगे, ये करेंगे, ये हमारा इतना हो जाएगा, है ना, तो इसमें सुख मिलेगा। मोती के समान चमकता है ना, और क्या होता है फिर बाद में? कितना चमकता है सब अनुभवी हो ना, कितना चमकता है पता है ना सब, है ना, बड़ा सुख मिलता है ना। तो अलपकार का सुख कैसा है? काग निष्ठा के समान ना, तो उसे छोड़ भी नहीं पाते। अब उंगली में काट नहीं सकता हूं, काट सकता हूं, छोड़ भी नहीं सकता उंगली को, वो रख भी नहीं सकता है ना, इतनी खराब उंगली है मेरी ना। ऐसे जीवन में मतलब सचमुच भी हमारे संबंध ऐसे, जहां सोचते सुख मिलेगा उसके पीछे हम कितने दुखी होते ना। इसलिए अल्पकाल का सुख आपको सहन करना है, दुख तो सहन, आपने सब तक सुना नहीं होगा सुख सहन करना है ना, मुरली में रोज आता है तो टेंशन देंगे तो पता लगेगा ना, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, तो ये बेसिकली तो माँ के रूप में बाबा ने हमें क्या बनाया, ब्राह्मण बना दिया, ठीक है। शिव बाबा ने हमें ब्राह्मण जन्म दिया, दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और फिर क्या दिया, गिफ्ट भी दिए हमको। प्राप्ति क्या कराइए, पैदा होते ही हमें बर्थडे गिफ्ट दिया है, उस बर्थडे गिफ्ट कौन से दिए, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दिए। क्या दिए, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, उसमें बैठो और क्या आ जाओ, कहां पहुंचा देती है वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, कहां पहुंचा देती है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में उतारते सीधी है ना, क्या उतारती है, मां के रूप में शिव बाबा क्या करता है, ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें क्या दिला देता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट देता है गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट, पैदा होते ही मिलती है ना। और कहता बाबा क्या कहता है, बच्चे जब चाहे इस लिफ्ट में बैठना और कहां पहुंचना, सूक्ष्म वतन में नहीं कहता है, कहां कहता है, सीधे गोद में उतारती है ना। तो कितनी वंडरफुल गिफ्ट है ना, तो सीधी गोद में उतारती है। देखो अगर कोई यहां से कोई, अगर कोई आपको कोई कोई आपको कोई आप धरती पे आना है, दूसरे ग्रह से आना है, या सपोज किसी को उतार दे चेन्नई में, उसको पहुंचना पांडव वन, तो पांडव वन कितनी देर लगेगी पहुंचने में, मान लो दादी यहां बैठी है, दादी यहां बैठी है, मान लो बाबा बैठे हैं, और वो ये लिफ्ट इतनी वंडरफुल है, कहां उतारेगी, चेन्नई में नहीं, आबू रोड में नहीं, कहां उतारेगी, सीधे बाबा की लिफ्ट, दादी की गोद में उतारती है ना, तो वंडरफुल लिफ्ट है ना। तो ये दिव्य बुद्धि क्या होती है, दिव्य बुद्धि में ना सत्यता पे आधारित बुद्धि, सत्यता माना, सत्यता माना अपने अनादि और आदि स्वरूप ना, अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित होकर हर संकल्प बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, ठीक है, ये है सत्यता। हमारा अनादि स्वरूप सत्य है ना, और आदि स्वरूप सत्य है, तो हमेशा इस नशे में रहो, ये याद आएगा, ये याद रहेगा मैं अनादि स्वरूप कैसी आत्मा, पावन सत्व प्रधान आत्मा, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अर्थात जिस बुद्धि में ये दैवी गुण समाये हो, सत्यता समाई हो, पवित्रता समाई हो, निर्भयता, निर्भयता माना जिसकी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, बताओ बताओ, कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, राइट में लेफ्ट में, राइट में शांति धाम और लेफ्ट में सुख धाम। बाबा किससे बात कर रहे हैं, शरीर से बात कर रहे हैं क्या, हा? क्या आत्मा से बात कर रहे हैं, बुद्धि रूपी आंख में शांति धाम और मन रूपी आंख सुख धाम है ना। बुद्धि का, बुद्धि में क्या रहना चाहिए, बाबा और शांति धाम, घर जब वापस जाना ना, और मन में क्या रहना, लक्ष्य, मन में क्या रहना चाहिए, लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, सुख धाम, ठीक है। वो जिसकी बुद्धि और मन सदा ही परम धाम में रहता है और सुख धाम में रहता है, उसको यहां डर लगेगा किसी बात से, उसकी बुद्धि मन यहां रहता ही नहीं है, तो निर्भयता हुई ना, ये है दिव्य बुद्धि है ना, ये दिव्य बुद्धि है। जब चाहो, जहां चाहो, बटन दबाओ, बटन कौन सा दबाना है, बटन कौन सा दबाना है, लिफ्ट में बटन दबाना पड़ता है ना, क्या दबाना है, मैं कौन हूं, मतलब बटन ये दबा दो कि मैं बस बाबा का बच्चा हूं ना, है ना, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये बटन दबाओ ना, मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं ना, तो ऐसा बटन दबाया और कहां पहुंच जाओगे सीधे, बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में, ठीक है। तो ये जो है से, अब ये जैसे एक एक अनुभूति, एक मां की अनुभूति, मां के संबंध की अनुभूति ना, अब बैठे जैसे ही मां के, देखो बाबा ने मुझे जन्म दिया, मनुष्य से क्या था, मैं पहले मनुष्य था, पांचों कर्म इंद्रियों के वश में था, है ना, मन के वश में था, मन में जो भरा हुआ था गंदगी उसके अनुसार मैं दौड़ता रहता था, है ना। अभी क्या मिल गया, अब ब्राह्मण, बेहद पहले बुद्धि देह में खोई थी, देह के संबंध में खोई थी, देह के पदार्थों में खोई थी, देह के संबंध स्वभाव संस्कार में खोई थी, अभी क्या हो गया? बुद्धि और मन कहां खोया हुआ है? भेद में। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, चेक करो, मैं ब्राह्मण बनाएंगे बना अब तक? माने तो बना दिया, शिव बाबा ने तो बना दिया, पर मैं बना के नहीं बना। अभी भी देह की याद आती है, कोई संबंधी याद आता है, कोई पदार्थ याद आता है, कोई स्वभाव है, अभी भी किसी से मोह है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव है किसी से? तो इसको बार बार देखो, चेक करो। आलस तो नहीं है, अलबेलापन तो नहीं है, चिंता तो नहीं है, भय तो नहीं है। ब्राह्मण को चिंता और भय नहीं होती, ब्राह्मण को कभी जल्दीबाजी नहीं होती, ब्राह्मण किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ब्राह्मण किसी पे शक नहीं आता है, ब्राह्मण कभी किसी के दोष नहीं देखता है, ब्राह्मण किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखता है। ठीक है, तो चेक करो कि मैं ब्राह्मण बना कि नहीं बना, बने ब्राह्मण नहीं बने, तो पहले यही चेकिंग कर लो। दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला है तो मेरे को क्या करना है? सारा दिन बाबा की मुरली, ये ज्ञान ABCD, सारा दिन इसी मनन चिंतन, इस बुद्धि में ये रहना है। बुद्धि में, बुद्धि कहां रहे? बाबा और परमधाम में रहे, और मन कहां रहे? सुखधाम में रहे। मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो ये है मतलब मेरी, ये दिव्य बुद्धि मुझे मिली। ठीक है, और फिर क्या? फिर बाबा की गोद। बाबा का बाबा कौन है? शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर है। और ब्रह्मा बाबा कौन है? बाप दादा की बात करें ना, बाप दादा की गोद में गए बाप, तो ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा है जिसने पुरुषार्थ करके अपनी बुद्धि को संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बनाया, जिसने अपने मन को संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बनाया, जिसने अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बनाया। तो ब्रह्मा बाबा कौन है? जिसकी बुद्धि, मन और संस्कार संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बन गए। तो ऐसे ऐसे पावन सत्व प्रदान की गोद में मैं बैठा हूं, और उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, ज्ञान के सागर की बरसात हो रही है, पवित्रता की बरसात, शांति की बरसात, रूहानी प्रेम की बरसात, आनंद की बरसात, शक्तियों की बरसात हो रही है ना, शक्तियों की बरसात हो रही है। तो देखो तो मतलब कितना मजा आया, अनुभव हो रहा है अभी आपको? अनुभव हो रहा है? सूक्ष्म वातावरण में पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? तो ये अनुभव की अथॉरिटी, इसमें बैठ जाओ आधा घंटा, आधा घंटा बैठ सकते ना इसमें, अनुभव करोगे तो इसकी गहराई में कितने जाओगे। फिर बाप के रूप में बाबा ने क्या किया? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मां के बाप की पालना, बाप की पालना करते हैं ना, तो बाप के संबंध की अनुभूति क्या है? बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, बाप के रूप में क्या दिया? त्रिनेत्री बना दिया है, बाप के रूप में त्रिनेत्री बना दिया है। त्रिनेत्री माना ज्ञान का समझ कर, ज्ञान माना सत्य की समझ, ज्ञान माना सत्य की समझ। अब मेरे को सत्य की समझ आ गई है, अब किसी को भी देखूं तो मैं आत्मा देखूं, उसको पिताजी नहीं देखूं, माताजी नहीं देखूं, क्या देखूं? आत्मा देखूं। पति नहीं देखूं, पत्नी नहीं देखूं, क्या देखूं? आत्मा। बेटा बेटी नहीं देखूं, क्या देखूं? आत्मा। भाई नहीं देखूं, घर में काम करने वाली भाई आती है ना, तो भाई नहीं देखना, उसको क्या देखना है? आत्मा देखना। घर में नौकर है, क्या क्या, क्या देखना है उसको? पड़ोसी है आत्मा, ऑफिसर है, बॉस है आत्मा, पड़ोस साथी है आत्मा देखना। तो तीसरे नेत्र से देखना, समझ से देखना, मेरा भी बाप वो है, उसका भी बाप वो है, तो इस भाव से मुझे देखना, ये समझ का नेत्र है। और फिर एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से जैसे होती ना, और फिर ये ड्रामा में इसका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है? आज मेरे को वो इंसल्ट कर रहा है, आज मेरे को अपमान कर रहे हैं, या मेरी महिमा कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरे कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो इसको गहरा, ये सत्य की समझ मुझे आनी चाहिए, ये समझ का तीसरा नेत्र, मुझे हर कारण समझ में आना चाहिए। मेरे को बीमारी क्यों आ गई? हार्ट की बीमारी क्यों आ गई? क्यों आ गई? कर्मों का हिसाब किताब है, मैंने किसका जरूर दिल दिखाया होगा। मेरे को डायबिटीज क्यों आ गई? जरूर किसी के जीवन में कड़वाहट पैदा की होगी, इसलिए डायबिटीज आई ना, नहीं तो मेरे को मीठा खाना मना हो गया, नहीं है ना। ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा हो गया? जरूर मैंने किसी का BP बढ़ाया होगा पिछले जन्म में, है ना। वो मेरे आसपास ही है, मेरे घर के घर वाले ही हैं जिनका BP बढ़ाया, आज मेरा BP बढ़ा रहे हैं वो लोग, नहीं मेरा बॉस है, मेरा BP बढ़ा रहे हैं, है ना, नीचे वाले मेरा BP बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? कर्मों का हिसाब तो समझ में आना चाहिए ना, नहीं? स्पेशली कर्मों की फिलॉसफी, ज्ञान के तीसरे कर्म नेत्र से क्या देखो? कर्मों की गुह्य गति दिखाई देती है, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाता है, वो कर्मों की गुही गुथी समझ में आती है, क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, राइट। और टीचर के रूप में क्या क्या बना दिया बाबा ने मुझे, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे टीचर की पालना दे रहा है, क्या बनाया उसे, त्रिकालदर्शी बना दिया, क्या बना दिया, बाप के रूप में त्रिनेत्री और टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है। अनादि स्वरूप की स्थिति समझ में आती तुरंत टिक जाते हैं, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, पांच स्वरूप की ड्रिल होगी ना, तो अब बैठ जाओ ड्रिल करने के लिए, आधा घंटा ड्रिल करते रहो, नहीं योग लगा नहीं लगा तो मतलब ऐसे आधा आधा घंटा आप कर सकते, एक एक, एक, एक संबंध की अनुभूति करो ना, एक एक आधा आधा घंटा योग कर सकते, और वंडरफुल अनुभव होता है। मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं, मैं तो ऐसे ही करता हूं कभी कभी ना, आधा घंटा मैं एक ही चीज में खोया रहता हूं ना, स्वदर्शन चक्रधारी बन के चक्कर ही लगाता रहता हूं, है ना, मास्टर जी के सामने बैठा हूं ना, मास्टर जी मुझे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, ठीक है। फिर सतगुरु के रूप में क्या बना दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, क्या बना दिया, तीनों काल तीनों लोकों में जाने का वीजा, मतलब क्या मल्टीपल एंट्री वीजा बना दिया है, जब चाहे सूक्ष्म वतन में जाओ, जब चाहे परमधाम में जाओ, और तीनों के चौथा लोक भी सुखधाम भी जाने का एंट्री दे दी, ठीक है। जब चाहे अपने महल में घूम के आ जाओ, गर्मी लग रही है यहाँ पे, अपने वहां एयर कंडीशन महल में जाके आ जाओ, ठीक है, देख के आ जाओ क्या हाल है, कितना बन गया है, कोई कमी तो नहीं है, कहीं हीरे वीरे लगाने कहीं पर कुछ लगाना, देख चेक करके आ जाओ, नहीं? तो ये बाबा ने हमको क्या बनाया, त्रिलोकीनाथ मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रही है, अभी के पुराने जीवन से मुक्ति, यहाँ मेरे को दुख है, बीमारी है, शरीर में बीमारी है, घर में लोग बीमार हैं, झगड़ा करते हैं, टेंशन करते हैं, ऑफिस में टेंशन है, इस जीवन से मुक्ति, ये दुनिया जाने वाली है, उपराम उपराम वृत्ति और अनासक्त वृत्ति हो गई, बैर की वैराग्य वृत्ति हो गई, तो ऐसे अपने आप से बात करना आ गया, ठीक है। तो टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में, बंधु के रूप में क्या किया, कहा बंधु, बड़ा भाई होता ना, बड़ा भाई छोटा बच्चे को होता ना, छोटा भाई होता है एक दो साल का तीन साल का, कहता तू तेरे पास से बसता है तो भारी लग रहा है, मेरे कंडा में उठाता हूं, तो बाबा कहता तुम्हारा जो लौकिक अलौकिक को जो मुझे को दे दो, है ना, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारा काम है, मेरे को दे दो, अलौकिक भी जिम्मेवारी, टीचर ने कहा सेवा करनी है, वो सेवा करने जाना, तुम मेरे को दे दो मैं कर लूंगा, सारा लौकिक भी बोझ दे दिया, अलौकिक बोझ भी दे दिया, बाबा हल्के होके चलते हैं ना, बाबा जब कहते हैं बच्चे, अच्छा बाबा एक काम बताता है, बच्चे अभी तू ये कर ले, चल मैं तेरे साथ हूं, तू कर ले, तेरे हाथ से कराते हैं, जैसे बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई के हाथ से कराएगा, जेब से पैसे निकालेगा और मंदिर में चढ़ाने कह के क्या करेगा, ले भैया भैया चढ़ा दे, तू भी चढ़ा दे ना, नहीं तो जेब में पैसे उसके हैं, मेरे पैसे हैं क्या, तो सारा काम खुद करा देता है ना, राइट। तो ऐसे बात काम कराएगा, नाम तुम्हारा होगा, काम तुम्हारा, काम वो करेगा, राइट। तो बंधु के रूप में क्या करता है, सारी जिम्मेवारियां उसको दे दो। सखा के रूप में क्या करते हो, जो गलतियां हमसे कैसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जाने अनजाने जो हमको बार बार याद आती रहती है, दोस्त को सारी बातें बताते हैं, माता पिता को नहीं बताते, भाई बहन को नहीं बताते, पति पत्नी को नहीं बताते, दोस्त को सब बता देते हैं, सच्चे दोस्त को ना। तो बाबा हमारा दोस्त है ना, सारी बातें उसको बता दो, बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, आज मेरे मन में ये बात आई, आज मैंने उसकी तरफ गलत देखा, उसको मैंने आंख दिखाई, है ना तो पाप किया नहीं किया, तो बाबा सिर्फ बाबा को दोस्त के रूप में सारी बातें बता देते हैं। वैसे तो मैं इसको छोटा छोटा ब्रीफ करता जा रहा हूँ, टाइम हो गया, वैसे आपको लंच भी करने का टाइम है, मैं इसको दो तीन संबंध और बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास पूरी करते हैं ना। साजन के रूप में क्या करता है, साजन के रूप में साजन का क्या काम होता है बताओ, साजन का काम क्या होता है, सजाना है ना। साजन क्या करता है, कपड़े लेके आता है, हीरे क्या होता है, हार लेके आता है, सोने का हार, हीरे का हार लेके आता है ना, यही तो करता है, साजन का काम सजाना। तो बाबा क्या करता है हमारे लिए, साजन है तो क्या करेगा, सजनी हूं मैं उसकी, है ना, तो क्या लाएगा, दैवी गुणों से सजाता है, ठीक है, है ना, दैवी गुणों से सजाता है ना। तो दैवी गुण कौन कौन से, मैंने पहले बताया भी, सत्यता है ना, पवित्रता, निर्भयता, मधुरता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ एक नामी, एक रसस्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, सम्मान मेरे के सबको सम्मान देना, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। ठीक है, 26 मैंने सुनाया आपको, है ना, 30 और सुनाऊं क्या? तो मेरे बहुत लंबी लिस्ट है, 56 है ना, तो ऐसे 56 है ना, तो एक एक दैवी गुण सजाता रहता है बच्चे। देख तुम सरल है ना, जैसे होता ना सजनी आती ना, अकल नहीं होती ज्यादा, है ना, फैशनेबल होती, नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए, कोई तुम्हारा कान काट के ले जाएगा। सरलता, नम्रता सिखाता है ना, कैसे बात करनी होती है ना, उदारता, कैसे दूसरों की गलती को समाना है, मधुरता, हमेशा मीठा बोलना है, सामने वाला कुछ भी बोले, है ना, धैर्यता, हर बात में पेशेंस रखनी है ना, एक, एक एक बात मतलब गहराई से बाबा हमको सिखाता है। सात गुण अंदर, जब सात गुण अंदर भर जाते हैं ना, तो जब कर्मों में आता है, सात गुणों का मिश्रण है एक्चुअली, जो दैवी गुण है कुछ और नहीं है, जैसे तीन रंग होते हैं प्राइमरी कलर्स, ब्लू, रेड और येलो, तो तीन रंग को अगर अलग अलग मिश्रण बनाएंगे ना अलग अलग देशों में, तो और 150 कलर बन जाते हैं। ऐसे जब आत्मा में सात गुण भर जाते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, जब कर्मों में आते हैं तो हमारे चेहरे से दिखाई देती है सत्यता, आंखों से दिखाई देती है सत्यता, दिखाई देती है चेहरे से, दिखाई देती है मुख से, मीठे बोल निकलते हैं, कर्मों में धैर्यता दिखाई देती है, कर्मों में दिखाई देते हैं गुण। ठीक है, हमारे कर्मों में गुण दिखाई देंगे, पर अंदर क्या होना चाहिए, सातों गुण होने चाहिए, भर जाएंगे तो इस तरह से दैवी गुण हमारे नाम में साजन के रूप में, सजनी के, और उसमें सजनी के रूप में जो आत्मा में पांच कीड़े लगे हुए ना, पांच कीड़े लगे, कौन कौन से कीड़े लगे हैं आत्मा में, दिल में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो बाबा उसको निकालता रहता है, ऑपरेशन करके निकालता रहता है, निकालता रहता है ना, फिर घुस जाते हैं, फिर निकालता है ना, सिर काटता है ना रावण, राम रावण का सिर काटता है ना, वो काटता है फिर आ जाते हैं, काटता फिर आ जाते हैं। ठीक है, फिर तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिल में भी बाबा को बिठाना पड़ेगा, सबको निकाल के खुद जब दिल में देहभान को खत्म कर दोगे तो संबंधियों को खत्म करोगे, संबंधियों को मतलब खत्म करना निकालना है ना, संबंधियों को अंदर से निकाल दोगे, है ना, देह के पदार्थों को निकालोगे, ये विकार सारे इस कारण आते हैं, देह देहभान के कारण आते हैं, देह के संबंधों के भान के कारण आते हैं, देह के पदार्थों के भान के कारण आते हैं। अगर देहभान को निकाल दोगे जड़ से, अमृत ये है जहर अंदर, ये निकालोगे तो विकार निकलेंगे, नहीं तो विकार वापस आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बाबा मेरा ऑपरेशन करता रहता है, जो आत्मा को रोग लगा हुआ ना, तो ये रोग बाबा निकालता है। और बच्चे के रूप में क्या करता है, जो भी आपका प्रस्थान मन धन है ना, समय, संकल्प, श्वास है, जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ना हमारी, समय सबसे बड़ा धन कौन सा है ब्राह्मणों का, समय, संकल्प, श्वास, ये जो सारा हम बाबा पे बलिहार कर देते हैं, बाबा की याद में, बाबा की मुरली में, बाबा की सेवा में निरंतर, है ना, तो अनुभव की अथॉरिटी बनते जाते हैं, एक एक गुण का अनुभव, एक एक बाबा की मुरली का, एक एक पॉइंट का अनुभव, वो एक्चुअली मैं उसका टाइम नहीं है बताने का, एक शक्ति का अनुभव, है ना, ज्ञान का, मतलब ज्ञान का जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान के एक एक पॉइंट का अनुभव इतना वंडरफुल है, एक एक सम्मान का अनुभव, है ना, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। फिर आत्मिक स्थिति, जैसे बताया ना, देही मानी स्थिति, देही मानी स्थिति मनन चित्तन की स्थिति है, और आत्म मानी स्थिति जब आप पवित्रता, जब आपके अंदर आने लगती है, पवित्रता आपको बनानी ही पड़ती है, बाबा ज्ञान देता है, पवित्रता आपको बनानी ही पड़ती है। ठीक है, शांति आपको बनानी ही पड़ती है, प्रेम आपको, रूहानी प्यार पैदा करना पड़ता है, ऊपर से नहीं आता है ना, जितना ज्ञान को घोटते जाते हो पवित्रता पैदा होती जाती है, शांति पैदा होती जाती है, रूहानी प्यार पैदा होता जाता है, तो रूहानी प्यार, शांति और प्यार, रूहानी, सॉरी, पवित्रता, रूहानी प्यार, शांति और रूहानी प्यार, ये स्थिति आत्म मानी स्थिति का अनुभव कराती है। और जब अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव होने लगता है तो अशरीर स्थिति का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होता है, जब बाबा की गोद में होते हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति अनुभव होती है, संतुष्टता आ जाती है, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति, ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है। और आनंद माना बाप की याद में लवलीन हो गए, तो ये स्थिति जो है अशरीर स्थिति है, जिसमें कहते ना, खुशी में आके आनंद में बाबा, आनंद से बाबा को याद करो, खुशी में बाबा को याद करो, है ना, जब खुशी से बाबा को याद करते हैं, देहभान से अलग होके बाबा, अशरीरी बन के बाबा को याद करते हैं, विक्रम विनाश होते हैं, और जब विक्रम विनाश हो जाते हैं तो उसको विदेही स्थिति कहते हैं। ठीक है, सारे विक्रम विनाश हो गए, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड खत्म हो गया, उसको कहते हैं विदेही स्थिति। राइट। तो ये जो है हमारी ऐसे डिफरेंट स्थितियां, सूक्ष्म वतन ये वाली स्थिति, साकारी स्थिति, फिर सूक्ष्म वतन की स्थिति। सूक्ष्म वतन है ना बाबा के दिल में रहना, मतलब बाबा के दिल में कौन रह सकता है जो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार है, जिसकी बुद्धि और मन शुद्ध है, पवित्र है। चमकीली ड्रेस माना, जिसकी बुद्धि भी संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनी, पवित्र बनी है, और मन भी सत्व प्रधान बना है, पवित्र बना है, तो ये हमारी चमकीली ड्रेस है। ये चमकीली ड्रेस पहन के हम सूक्ष्म बाबा की गोद में जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका अनुभव करना, परमधाम की स्थिति का अनुभव करना। तो आप अपने आप ही कोशिश करते रहना, मुरलियां पढ़ते रहना, ठीक है, मुरलियों का मनन चिंतन करते रहना, इतना खजाना तैयार हो जाएगा, इतना खजाना तैयार हो जाएगा आपके पास। मतलब मुरलियां, मैं तो देखा है कि मैंने अव्यक्त मुरलियां, हालांकि अव्यक्त मुरलियां जितनी पढ़ते हैं ना, जितनी अव्यक्त मुरली पढ़ोगे, साकार मुरलियां पढ़ते हैं, दिन में बार बार रिवाइज करो। मेरी जेब में हमेशा एक लास्ट संडे की अव्यक्त मुरली और आज की मुरली मेरी जेब में हमेशा रहती है, चार्ट मेरी जेब में रहता है। तो ये दो चीजें आप पक्की कर दो, मुरली को जेब में रखना शुरू करो, ठीक है, जेब नहीं है तो जेब लगवा लो, है ना, ठीक है ना, तो देखो उसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाओगे, एक चीज की अनुभव की अथॉरिटी बन जाओगे। घंटे घंटे याद का चार्ट बनाओ और दिल को सच्ची साफ बनाओ। सच्ची साफ मतलब जो जैसी बात हो जाए, गलत एक भी बात गलत हुई ना, अमर्यादित सोचा, बाबा के साथ कंबाइंड होकर सोचो, देखो बाबा से कंबाइंड होकर सोचो, देखो बाबा से कंबाइंड होकर सुनो, बाबा से कंबाइंड होकर खाओ, बाबा से कंबाइंड होकर बोलो, बाबा से कंबाइंड होकर लोगों से मिलो, ये पक्का अभ्यास बनाओ, तब बाप का साथीपन का अनुभव का होगा, बाप मेरा साथी है ना। तो ऐसे जब अनुभव करोगे निरंतर और बाबा से, बाबा की मुरली को जीवन बनाओगे, तो हमारा जीवन कैसा बनता जाएगा, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। और अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, माया का कोई एग्जाम, कोई पेपर, कितना बड़ा तूफान, आप हमेशा अचल अडोल रहेंगे, घबराएंगे नहीं। और महावीर महारथी बनने के बाद क्या बन जाएंगे, महावीर, महावीर माना जिसके दिल में सदा राम हो, जिसके दिल में सदा शिव बाबा हो, और कोई ना हो, ये मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। सॉरी मैं टॉपिक पूरा नहीं कर पाया गहराई से, किंतु इसकी बहुत गहराई है ना, तो इसको आप पढ़ना ध्यान से, मुरलियों में पढ़ना, मुरली को दोस्त बनाओ, है ना। अच्छा कई बार, कई बार मेरे दिल में ही आता है, कई बार मेरे दिल में पता क्या आता है, बाबा तो ऊपर जाके बैठ गया है ना, ये बाबा के जल मुरली है ना, जैसे होता है ना कोई कोई किसी की निशानी होती है ना, तो क्या होता है ना, उसको ही समझते हैं कि बस ये उसकी, ये वो, यही वो है ना। तो कई बार तो ऐसा ही मुरली ही बाबा है, ठीक है। हाँ जी, समाप्ति वर्ष में ना कमजोरी की समाप्ति कर दो, ठीक है, कैसा भी कमजोरी की समाप्ति कर दो। अभी बाबा का मैसेज भी आया था ना, ये कमजोरियों की समाप्ति का वर्ष है, अभी तक कमी कमजोरियां बहुत थी, अभी इसको समाप्ति कर दो। हाँ, ये दूसरा पार्ट, इसका दूसरा ये मतलब हो सकता है, हाँ वही मुरली, मुरली को मतलब ऐसा समझो कि मुरली तो बस जीवन है ना, जिसके पास मुरली है, जिसकी जिसने मुरली, मतलब जिसके यहाँ जेब में मुरली नहीं, जिसके दिल में मुरली, कई लोग जेब में ही पड़ी रहे और उसको पूछे कोई नहीं तो उसका मतलब नहीं है ना, जिसके दिल में मुरली है ना, बाबा बाबा की मुरली है, उसको कभी भी क्या है, वो ही इस नागिया काल के, वो ना जो कहते हैं ना, कौन सा नाग होता है ना, कौन सा नाग था वो, शेष नाग कहो या वो नहीं था, काली देह पे था ना, कौन सा पांच पांच फन वाला सांप था, वो उसके सिर पे बैठ के सिर पे डांस कर सकता है, श्री कृष्ण के समान डांस कर सकता है, शेष नाग नहीं था वो, यमुना में जो नहीं काल नाग दिखाते पांच मुंह वाला, कालिया नाग ना, उसके सिर पे डांस करते हुए दिखाया ना कृष्ण को, तो वो डांस कर सकता है, ठीक है। तो मुरली को दोस्त बनाओ, मुरली सत्य है, मुरली के अलावा कोई सत्य नहीं है, एक बाबा की बाबा और बाबा की मुरली, बस यही सत्संग है, इसमें रहो और रोज मुरलियां पढ़ो, सुबह मुरली तो दिन में बार बार रिवाइज करो, और संडे की मुरली रोज पढ़ो एक हफ्ता। और भी किताबें हैं हमारे पास, मुरली किताबें सभी के पास होती है ना, अव्यक्त मुरली किताबें पढ़ो, एक से एक बढ़िया मुरली होती है, और बाबा को जब मुरली पढ़ते इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, बात नहीं पूछो ना। तो ये पढ़ के करो, ठीक है, तो है किसी का अनुभव होता जाएगा, अब शक्तिशाली बनते जाएंगे और सभी क्या बन जाएंगे, 108 की माला में आ जाएंगे सभी के सभी, ओआरसी वाले सभी 108 की माला, ठीक है ना? 108 की माला में कितने आ सकते हैं? 108 नहीं, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा था मैं लड़िया लगा दूंगा, ठीक है। आप 108 की माला में आना चाहो तो मैं लड़िया लगा, साइड में लड़ी में माला में माला बना दूंगा, ठीक है। तो सभी आ सकते, ओके। ओम शांत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश भाई जी का अनुभव, ये बहुत गहरी चीज है और बहुत सरल शब्दों में आपने अलग अलग संबंधों से बाबा के साथ का अनुभव और उसी अनुभव को अपनी एक अथॉरिटी के रूप में यूज करके कार्य में लाना, इस विषय को बहुत अच्छी तरह गहराई से हमारे सामने स्पष्ट किया है। मैं आदरणीय भाई जी का एक बार फिर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि नीचे कैट का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और प्रोग्राम के बीच से शांतिवन से ऊपर स्पेशली हम सबसे मिलने के लिए आप यहाँ आए हैं। थैंक यू। मल्टीपल कारोबार कैसे किया जा सकता है हमारे ये सभी मुरब्बी भाइयों से सीखने जैसा है।
अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना हो तो स्विट्जरलैंड जाना हो तो क्या करना, वहां कहते हैं स्वर्ग है ना, बहुत सुंदर जगह है। तो दो तरीके हैं जाने के, एक तो उसको आप इंटरनेट पे देख सकते हो, है ना, ठीक है ना। तो इंटरनेट में जाने में पैसे लगेंगे क्या? ₹5 के इंटरनेट खर्चे पे आपको ये सब देख लोगे ना, मतलब दिखाई देगा स्विट्जरलैंड, उसकी राजधानी और सब जो भी उसके मेन मुख्य पॉइंट्स हैं दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो ₹5 नहीं लगेंगे, ₹2-1 में हो जाएगा, इंटरनेट ज्यादा खर्चा नहीं आता, अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। और दूसरा है आप वहां जाके आओ, इंटरनेट स्विट्जरलैंड जाके आओ, कितने पैसे लगेंगे हाँ? काफी पैसे लगेंगे ना, पैसे भी लगेंगे और टाइम भी लगेगा, 7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, और इसमें कितने देर लगेगी? 5 मिनट ना, 5 मिनट सारा स्विट्जरलैंड देख लोगे आप ना। तो यही फर्क है, बाबा ने हमेशा कहा है अगर अनुभव की अथॉरिटी करनी है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो रिवाइज, एक तो बाबा की मुरली है ना उसको रिवाइज करो, एक एक पॉइंट को रियलाइज करो, अनुभूति करो, एक एक लाइन की, एक एक महावाक्य की अनुभूति करो। हम क्या करते हैं? विजुलाइज करते हैं, ये विजुलाइज करते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं, मतलब अपना ही स्विट्जरलैंड बना लेते हैं, अपना ही सूक्ष्म वतन बना लेते हैं, अपना ही परम धाम बना लेते हैं, है ना, अपना ही बना लेते हैं। अपना नहीं बनाओ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मैं कौन हूं, फील करो, अनुभव करो परमात्मा के। बस आत्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को भी आप देख नहीं सकते, बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकते हो, है ना। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, ज्ञान मतलब समझ का नेत्र मिला है, सत्य की समझ का नेत्र मिला है, दिखाई नहीं देती आत्मा, परमात्मा दिखाई, उसको अनुभव कर सकते हो, है ना। सूक्ष्म वतन को आप देखने की चीज नहीं है, उसको अनुभव कर, सूक्ष्म वतन क्या है? बाबा का दिल को आप अनुभव कर सकते हो, बाबा का दिल देख सकते हो क्या? देख नहीं सकते हो आप। एक लाल रंग का फूल है, गुलाब का फूल है, उसकी खुशबू क्या कर सकते हो? देख सकते हो। गुलाब का फूल तो लाल रंग का है किंतु उसकी खुशबू कैसे रंग की है? कैसे रंग की है? मोती के फूल की खुशबू कैसे रंग की है? मोतिया सफेद रंग का है, उसकी खुशबू कैसे रंग की है? कैसे रंग की? देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो क्या करो? सत्य बाबा की सत्य मुरली को, एक एक पॉइंट को रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। जब आपके अंदर अपनी ऑटोमेटिक शक्ति आएगी, आप सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओगे। तो फिर सूक्ष्म वतन कैसा है? तो जैसे बताया, स्विट्जरलैंड जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मेहनत लगती है, ऐसे ही क्या होगा, सूक्ष्म वतन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, घोटना पड़ेगा। तो रियल सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओगे, ठीक है। अपना सूक्ष्म वतन बनाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जैसे आपने बनाया ना टीवी किसके द्वारा, वो मजा नहीं आएगा आपको। अगर मसाला डोसा खाना है, एक तो आप इस पे मिलता है मसाला डोसा ना, आप इस पे मोबाइल पे मिलता है, पता है आपको, आप देखो मसाला डोसा फोटो आ जाएगी मसाला डोसे की, ठीक है, बहुत बढ़िया वाला है ना, आप खा लो, ठीक है। और एक मसाला डोसा रियल बनाना हो तो क्या करेंगे, टाइम लगेगा ना, बाजार से मंगाओगे तो पैसे लगेंगे, एक घंटे बाद आएगा, दो घंटे बाद आएगा, नहीं, हम तो बाजार का खाते नहीं ना, तो हम तो घर में बनाएंगे, तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे ही टाइम लगता है ना, मेहनत है, मासी का घर नहीं है, है ना, सूक्ष्म वतन में वही जा सकते, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सपूत बच्चा वो जा सकता है, राइट। तो मैं इसलिए मैं क्या चाहता है, विजुलाइज नहीं करो, बाबा ने जो कहा है, इसलिए मुरली को अपना दोस्त बनाओ ना, तब होगा, राइट। तो जो बाबा कहता है उसकी मुरली में जाओ, है ना, और में मत जाओ, याद रहेगा ये बात, स्विट्जरलैंड जाने की बात याद रहेगी, मसाला डोसा खाने की बात याद रहेगी, क्यों इतनी मेहनत करते हो, टीवी पे खा लो ना आप, वो डाइट की क्लास रोज पीसो माइंड पे आती है, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, टीवी पे नाश्ता कर लो ना, इतनी मेहनत क्यों करते हो घर में बनाने की, नहीं लगन लगन, ठीक है। तो रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो, है ना, पवित्रता बनाओ, शांति बनाओ, रूहानी प्रेम पैदा करो, अतीन्द्रिय सुख पैदा करो, आनंद पैदा करो, तब मजा आएगा, ठीक है। ये जो गेम बनाते हैं ना, जो आटे अपने आप बनाते हैं, ये इस लाइट बिजली की रोशनी जैसा है, खुशी तो उससे भी होती है, हम कलरफुल योग करते हैं, कलर सतरंगी योग करते हैं, वो रियल योग नहीं है, बाबा ने नहीं बताया हुआ, ठीक है, उसके कोई कलर नहीं होते, ज्ञान के कलर पवित्रता शांति प्रेम सुखान कलर नहीं होते, है ना, ये तो ये कोई प्यार का रंग है क्या, हरे रंग का, हरा रंग जला दो, हरा बल्ब जला दो, अच्छा प्यार आ रहा है, आ रहा प्यार आ रहा है, चलो जी भर गए, नहीं प्यार शक्ति है, लाल रंग लगा दिया, लाल रंग अंदर आ रहा है, शक्ति आ रही, शक्ति आ गई क्या, ऐसे शक्ति नहीं आती, ठीक है, शक्ति क्या समय नहीं है, पर आनंद का जब अनुभव होगा तो सब शक्ति आएंगी, अतिंद्र सुख आनंद का अनुभव होगा, शक्तियां तब आती है अंदर, तो सही मार्ग का पुरुषार्थ करो, जो बाबा ने बताया वो पुरुषार्थ विधि से पुरुषार्थ करो, अगर हमारी विधि गलत है सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, आपको 20 जब मैं एम्स में था ना तो मेरे को तैरना नहीं आता था, मैं तैरना शुरू किया, मैंने तैरना सीखना शुरू किया, तो चार दिन तो मैंने पाइप पकड़ के तैरा, उन्होंने कहा यहाँ पाइप पकड़ के आप ना हाथ पैर मारते रहो, पांचवें दिन कहा मेरे को ना अच्छा अभी पाइप छोड़ के थोड़ा इधर को करो, तो मैं सोचा मैं हाथ पैर मारता रहा, आंखें बंद, डर लग रहा था डूब ना जाऊं, तो मैं पैर मार रहा था, हाथ पैर भी मार रहा था, तो मैंने कहा काफी आगे निकल गया हूं, मैंने आंख खोली ना जैसे ही तो वहीं पे था, एक सेंटीमीटर आगे भी नहीं गया था, है ना, इसलिए विधि यथार्थ रखना है ना, राइट, विधि यथार्थ नहीं सिद्धि नहीं मिलेगी, ओके, कहीं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना जैसे मैंने किया था, है ना, ओम शांति। जैसा होता है रियलाइजेशन में, सूर्य की रोशनी जैसा होता है, सारे मच्छर मक्खी मर जाते हैं, विक्रम विनाश होते हैं, विजुलाइजेशन में खुशी होती है कि तुम मच्छर मक्खी आ जाते हैं, अभिमान आ जाता है ना, जैसे ध्यान रहे कि जो बाबा ने बताया उसको यूज करें।